पल्लवी उसके पास आकर बैठ गई और बोली, आप कुछ हमारी बात का जवाब देंगे भी या नहीं? क्योंकि भाभी सा ने तो शादी करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक बार अभिमन्यु की शादी हो गई तो फिर राजगद्दी उसे मिल जाएगी और फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पल्लवी ने नरेंद्र के बगल में बैठकर अपना सिर पीटते हुए कहा, लड़की वालों के पास एक बार को शादी में समय मांगने का मौका था, वे समय का बहाना कर सकते थे, लेकिन भाभी सा ने उनके पास वो विकल्प ही नहीं छोड़ा, शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी खुद ही ले ली। ऐसे में भला कौन ही मना कर पाएगा उनकी बात को? आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या मैं यूं ही परेशान हो रही हूं? नरेंद्र ने पल्लवी की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, सब सुन रहा हूं मैं और सब समझ भी रहा हूं। मुझे ये भी पता है कि भाभी सा ये शादी जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु को राजगद्दी पर बैठाने के लिए ही कर रही हैं, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर बहुत बुरी तरह से पानी फेरूंगा। नरेंद्र ने जैसे ही इतना कहा, पल्लवी उसे हैरानी से देखने लगी। तभी नरेंद्र शैतानियत से मुस्कुराते हुए बोला, मैं भाभी सा के इरादों को पूरा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही पल्लवी ने नरेंद्र के मुंह से ये बात सुनी, वो उसकी तरफ घूमकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्या करने वाले हो तुम? कोई प्लान है क्या जिससे ये शादी रुक सकती है? नरेंद्र ने पल्लवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही राजगद्दी अभिमन्यु को लेने दूंगा? बिल्कुल नहीं। भाई साहब के बाद अगर राजवंश परिवार को संभालने की बागडोर किसी के हाथ में आएगी तो वो मैं हूंगा, और मेरे होते हुए अभिमन्यु तो कभी भी इस राजमहल का राजा नहीं बनेगा। नरेंद्र की बातें सुनकर पल्लवी थोड़ी कन्फ्यूज होकर बोली, तुम क्या करने वाले हो मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और कैसे रोकोगे तुम शादी को? नरेंद्र ने कहा, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा, बस तुम मुझ पर इतना भरोसा करो कि मैं ये शादी तो नहीं होने दूंगा। नरेंद्र को इतने कॉन्फिडेंट से ये बात बोलते देखकर पल्लवी थोड़ी शांत हुई और सोचने लगी कि आखिर नरेंद्र के मन में क्या चल रहा है, वो अभिमन्यु और इप्सिता की शादी को कैसे रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ इप्सिता ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। उदय ने दरवाजा जोर से पीटते हुए कहा, ऋषि, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमारे तीन गिनने तक दरवाजा नहीं खोला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। नंदिनी ने भी उदय की बात सुनकर चिल्लाते हुए कहा, इप्सिता, इस तरह से दरवाजा बंद करके बैठने से कुछ नहीं होगा, ना ही तुम्हारे रोने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या तुम कृपया दरवाजा खोल सकती हो? क्या हम बात कर सकते हैं? उदय ने नंदिनी की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाया और कहा, वो ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी, हम अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इतना बोलकर उदय ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और कहा, ऋषि, हम सिर्फ तीन तक गिनेंगे, एक, दो। उदय दरवाजा तोड़ने ही जा रहा था कि तभी इप्सिता दरवाजे के पास आई और उसने दरवाजा खोल दिया। इप्सिता की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। इप्सिता को इतनी बुरी हालत में देखकर नंदिनी भागते हुए कमरे के अंदर आई और उसने जल्दी से इप्सिता को अपने गले लगा लिया। उदय नंदिनी और इप्सिता को देख रहा था। तभी नंदिनी ने इप्सिता को बेड पर बैठाया और जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर इप्सिता को पानी पिलाने लगी। उदय नंदिनी के इतने केयरिंग नेचर को देखकर उसकी तरफ ही देखने लगा। तभी वो इप्सिता के बगल में बैठ गया और उसने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से रोगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगा? मैं माँ बाप से बात करूंगा, वे इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। इप्सिता ने उदय की तरफ देखा, उसके मुंह से ये बात सुनकर इप्सिता की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। उसने उदय को गले लगा लिया। उदय उसे साइड हक कर रहा था। उसने इप्सिता के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे रिलैक्स करते हुए कहा, काम डाउन ऋषि, अभी भी एक हफ्ता बचा है, कल नहीं है तेरी शादी, तुम्हारी शादी तक तुम चुप रहो और हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। इप्सिता ने उदय की तरफ देखा और रोते हुए कहा, भैया, क्या माँ बाप मेरी खुशी के लिए सिर्फ एक महीने शादी के लिए नहीं रुक सकते? सिर्फ दो हफ्ते बाद हमारे फाइनल एग्जाम है, इन दो हफ्तों में हम अपने एग्जाम क्लियर करते हम वापस आ जाएंगे। क्या इन 15-20 दिनों के लिए शादी को डिले नहीं किया जा सकता? माँ बाप मिस्टर अभिमन्यु की माँ के आगे बोलने से इतना क्यों घबरा रहे हैं? इप्सिता की बात सुनकर उदय कुछ सोचने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे पता है कि क्यों उसके माँ बाप रानीसा के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। उदय ने अपने मन में कहा, कैसे बताऊं मैं ऋषि को कि तुम्हारी जो ये शादी अभिमन्यु से हो रही है, ये एक तरह की बिजनेस डील है जिससे डैड को बहुत फायदा होगा, इसी वजह से माँ और डैड उनकी हर बात मान रहे हैं। उदय को इस तरह से सोचते देखकर नंदिनी और इप्सिता दोनों ही उसकी तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगी। इप्सिता उदय की तरफ देखकर रोने लगी। तभी नंदिनी ने इप्सिता को चुप करते हुए कहा, इप्सिता, प्लीज यार चुप हो जा। नंदिनी की बात सुनकर उदय अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने इप्सिता की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देख लिया ना तुमने, हम तुमसे इसीलिए पहले से ही मना कर रहे थे कि मत मानो मम्मी पापा की बात, अब वे अपने फायदे के लिए तुम्हारी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देंगे। इप्सिता उदय की बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। इप्सिता को इस तरह रोते देखकर उदय ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, इसीलिए मैं तुमसे पहले ही मना कर रहा था कि मना कर दो इस शादी के लिए, लेकिन तब तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस शादी को कैसे रोकूंगा। जहां तक मैं जानता हूं, मम्मी पापा मेरी बात इतनी आसानी से तो मानने वाले हैं नहीं। इप्सिता ने रोते हुए कहा,
हमें कहाँ पता था भैया कि मम्मी पापा इतनी जल्दी शादी करने के लिए मान जाएंगे, क्योंकि मम्मी ने हमसे बोला था कि वे एंगेजमेंट जल्दबाजी में कर रही हैं, लेकिन शादी में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमें नहीं पता था कि मम्मी हमको सिर्फ बहलाने के लिए ऐसा बोल रही हैं। नंदिनी ने उदय की तरफ देखकर थोड़ा सोचते हुए कहा, फिर भी हम इस तरह से हार तो नहीं मान सकते ना, और वैसे भी ईशु, मैं जानती हूँ तेरे लिए तेरे एग्जाम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को अगर मैं तेरी जगह पर होती तो मैं एग्जाम छोड़ देती, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो अपने एग्जाम नहीं छोड़ने वाली है ना। इप्सिता ने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़े हुए कहा, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मैं अपने एग्जाम तो देकर रहूंगी। मैं जानती हूँ ये शादी मम्मी और पापा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए हमारे एग्जाम भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। उदय इप्सिता की बात सुनकर उसकी तरफ एकटक देखता ही रह गया। तभी इप्सिता की नजर उदय पर गई। उसने उदय से पूछा, क्या बात है भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उदयवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ईशी, अगर तुम्हें अपने एग्जाम देने हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मम्मी पापा के खिलाफ जाकर एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उदय ने जैसे ही ये बात कही, इप्सिता और नंदिनी दोनों एक साथ बोली, क्या करना पड़ेगा हमें? उदय ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी शादी से भागना होगा, बस हमें यही एक रास्ता नजर आ रहा है। अगर तुम्हें अपने एग्जाम देने हैं तो भाग जाओ अपनी शादी से। इप्सिता ने जैसे ही उदय की बात सुनी वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वहीं नंदिनी ने उदय से पूछा, क्या ऐसा करना ठीक होगा, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने में अभी भी 2 हफ्ते हैं और ईशु की शादी तो 1 हफ्ते में ही होने वाली है। क्या आपको लगता है ऐसा करके ईशु बच सकती है? उदय अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यही एक मौका हो सकता है बस। इप्सिता ने मना करते हुए कहा, नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ से भागेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? मम्मी पापा हमें 1-2 दिन में ढूंढवा ही लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे?
इप्सिता अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। तभी उदय ने इप्सिता को चुप करते हुए कहा, इशी, तुम रोना बंद करो जब तक हम कुछ और सोचते हैं। इतना बोलकर उदय कमरे से बाहर जाने लगा। नंदिनी उदय की तरफ ही देख रही थी। इससे पहले कि उदय नंदिनी से कुछ बोल पाता, नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, मैं इप्सिता के साथ हूँ, डोंट वरी। नंदिनी के मुंह से ये बात सुनते ही उदय तुरंत कमरे से बाहर चला गया और इप्सिता वहीं बेड पर रोते रोते लेट गई और सो गई क्रमशः।